بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. دیکھو بات چل رہی تھی محبت الہی پر، کہ اللہ تعالی کا تعلق مل جائے تو اس کے لیے چند اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کریں گے تو اللہ کا تعلق مل جائے گا. اس میں سے پہلا جو تھا وہ کثرت ذکر اللہ، دوسرے نمبر پر اللہ تعالی کے انعامات کو سوچنا، تیسرے نمبر پر اس کے مقابلے میں اپنا برتاؤ کو سوچنا کہ میرا کیا اللہ کے حکموں پر عمل ہے، یا اپنی حیثیت کو سوچنا، اور چوتھا تھا کسی اہل اللہ سے تعلق رکھنا، اور اب پانچواں ہے طاعت پر مواظبت کرنا. پانچواں طریقہ طاعت پر مواظبت، یعنی ہمیشگی. اسباب محبت میں پانچواں سبب یہ بیان فرمایا کہ طاعت پر مواظبت کرنا، یعنی اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت کرنا، اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت کرنا. یہ جتنی زیادہ اطاعت کروں گے اتنی ہی محبت بڑھے گی، جتنی زیادہ اطاعت کروں گے اتنی ہی محبت بڑھے گی. اللہ تعالی نے محبت اور طاعت کے درمیان عجیب رشتہ رکھا ہے، وہ یہ کہ اطاعت سے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر محبت سے مزید اطاعت ہوتی ہے. سبحان اللہ، اطاعت سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، پھر محبت سے مزید اطاعت پیدا ہوتی ہے، پھر اس اطاعت سے مزید محبت پیدا ہوتی ہے، پھر اس محبت سے مزید اطاعت انجام پاتی ہے. یہ سلسلہ ایک لا متناہی حد تک چلا جاتا ہے. سبحان اللہ، چلتا رہتا، اطاعت سے محبت، محبت سے اطاعت، اطاعت سے محبت، محبت سے اطاعت، چلتا ہی رہتا. عجیب محبت ہوتی کیونکہ جب اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالی محبت ڈال دیتے ہیں. دیکھو ایک بچہ ہے، ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے تو بتاؤ ماں باپ کی محبت، اس کی محبت یعنی ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت آئے گی، اور جب ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت آ گئی تو یہ دل واپس ادھر جاتا ہے، اس کے دل میں بھی ماں باپ کی محبت آ گئی. جب ہم نے اللہ کا حکم مانا تو اللہ تعالی خوش ہو گئے، اور اللہ خوش ہو گئے تو ہمارے دل میں خوشی ضرور آئے گی، وہی محبت ہے. تو اس طریقے سے وہ بڑھتا رہتا ہے، پھر وہ محبت آئی تو پھر جی چاہے گا کہ میں اور زیادہ ان کی بات سنوں. جب ماں باپ نے پیار کیا نا، جب بچہ نے کسی بات کو مانا تو ماں باپ نے اس کو پیار کیا، یہ محبت ملی، تو اس سے کیا ہوگا، تو بچے کے دل میں اور زیادہ چاہے گا کہ میں تو ابھی اور بات مانوں. جب اور بات مانی تو ماں باپ میں اور زیادہ محبت آئی، تو محبت آئی تو اور زیادہ انعام دیا. جب انعام دیا تو بچے نے کہا اب تو ہر بات پوچھ کے چلنا. تو دیکھو اطاعت سے محبت پڑی، محبت سے اطاعت آئی، تو یہ ایک مستقل سلسلہ چلتا رہا. تو جب ایک مخلوق کے ساتھ میں ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالی کے ساتھ میں، جب اللہ کی بات کو مانیں گے تو اللہ کے دل میں اللہ ہم سے خوش ہوگا، جب خوش ہوگا تو اس ہمیں دل میں محبت آئے گی، تو پھر ہمارے دل میں محبت آئے گی، ہم پھر اللہ کی اطاعت کریں گے. تو اس حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو ایک سلسلہ چلتا ہے، یہ تو دور لازم آ رہا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے اور دین کے حکم پر چلنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی محبت دل میں پیدا کر لی جائے. جب یہ پوچھا گیا کہ محبت کیسے پیدا کرے تو یہ کہا گیا कि मोहब्बत पैदा करने के लिए अल्लाह ताला की इताअत करो। तो ये तो दौरे लाजिम आ गए, यानी ये कहा जा रहा है, यानी ये कहा जा रहा है कि दीन पर चलना है तो मोहब्बत करो, और मोहब्बत पैदा करने के लिए दीन पर चलो। दीन पर चलना है तो मोहब्बत पैदा करो, और मोहब्बत पैदा करने के लिए दीन पर चलो। तो ये तो दौरे लाजिम आ रहा है कि इसके लिए ये करो, इसके लिए ये करो, कि जिन दो चीजों को हासिल करना चाहते हैं उनमें से हर एक दूसरे पर मौकूफ हो रही है। यानी मोहब्बत लेना है तो दीन पर चलो, और दीन पर चलोगे तो मोहब्बत मिलेगी। तो गोया ये करेंगे तो वो मिलेंगी, ये करेंगे तो वो मिलेंगी, तो हर एक दूसरे पर मौकूफ हो रही है। तो उसके जवाब को गौर से समझने की जरूरत है। जरा जवाब समझो, एक चैन है सिलसिला। इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने अपनी इताअत में एक खासियत रखी है। अल्लाह ताला ने अपनी इताअत में एक खासियत रखी है कि जो बंदा भी इब्तिदा में थोड़ी सी मेहनत करके इताअत करेगा तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला उसको मोहब्बत का एक खास दर्जा अता फरमाएंगे। इताअत करेगा तो मोहब्बत का एक खास दर्जा अता फरमाएंगे। फिर मोहब्बत के उस दर्जे का नतीजा ये होगा, जब वो मोहब्बत का दर्जा मिला, कि मजीद इताअत करने का जज्बा पैदा होगा। जो मैंने मिसाल से समझाई कि एक बच्चे ने माँ बाप की बात को सुना तो माँ बाप के दिल में एक खुशी हुई, एक मोहब्बत आई जो बच्चे को खुश कर दिया। तो बच्चे के दिल में खुशी की वजह से मोहब्बत आई ना माँ बाप की, तो अब वो खुशी का जज्बा बच्चे को और बात को मानने पर लगा दिया। तो ऐसे ही अल्लाह ताला की जब बात मानते हैं तो दिल में एक अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है, तो उसके वजह से एक और जज्बा नया ताजा होता है कि मैं अल्लाह की और इताअत करूं। जिसका हासिल ये हुआ कि शुरू में बगैर किसी मेहनत और अमल के खुद ब खुद मोहब्बत पैदा नहीं होगी, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उस मेहनत के नतीजे में मोहब्बत बढ़ती जाएगी, इताअत बढ़ती जाएगी। लेकिन आपको मैं बैठा रहूं और मोहब्बत आ जाए तो ये नहीं हो सकता। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो तो क्या होगा, मोहब्बत आएगी एक खास, उसके बाद उसके दिल के अंदर और जज्बा पैदा कर, मैं और इताअत करूं। जब मजीद इताअत की तो मजीद मोहब्बत मिली, फिर मजीद इताअत की, तो ये सिलसिला चलता रहा। तो मजीद इताअत करने का जज्बा पे इसका हासिल ही हुआ कि शुरू में बगैर किसी मेहनत और अमल के खुद ब खुद मेहनत मोहब्बत पैदा नहीं होगी, और नहीं खुद ब खुद इताअत करना आसान होगा, बल्कि दीन शुरू में थोड़ी सी कुर्बानी मांगेगा। दीन शुरू में थोड़ी सी कुर्बानी मांगेगा। भाई कुर्बानी दो, जैसे दावत तबलीग में हम तश्कील करते, भाई कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, लेकिन उस कुर्बानी के नतीजे में क्या होता है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है। हाँ, कहते हैं कि बैठे बैठे रहे और मोहब्बत आए, ये नहीं हो सकता। थोड़ी सी कुर्बानी मांगेगा, थोड़ी सी मेहनत और हिम्मत मांगेगा। इस हिम्मत और मेहनत के बगैर ये दौलत नहीं मिलती, ये हिम्मत और मेहनत के बगैर ये दौलत नहीं मिलती। लिहाजा शुरू में आदमी को यह करना पड़ेगा कि अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ और अपनी दुनियावी और बशरी तकाजों के खिलाफ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और जब एक मर्तबा इंसान वो मेहनत कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके दिल में एक नूरे मोहब्बत पैदा फरमा देते हैं। जी, तो ये है। इस बात को हजरत वाला ने दूसरी जगह पर एक मिसाल के जरिए समझाया है। फरमाया कि जैसे रेल के इंजन में अगर भाप भरी हुई हो, स्टीम, रेल जो पहले जो इंजन चलते थे वो स्टीम से चलते थे, तो उसको कहते हैं उर्दू में भाप। रेल के इंजन में अगर भाप भरी हुई हो, उस जमाने में रेल भाप के जरिए चलाई जाती थी, पेट्रोल और डीजल उस वक्त नहीं था, तो वो रेल बहुत तेज भागती है जिसके अंदर भाप भरी हुई हो, स्टीम हो। लेकिन अगर रेल में सब चीजें मौजूद है, पहिए भी लगे हुए हैं, टायर, लेकिन इंजन के अंदर भाप नहीं है, स्टीम नहीं है, गर्मी नहीं है। अब अगर कोई शख्स धक्का लगाकर उस रेल को चलाना चाहेगा तो वो रेल पूरे दिन में बमुश्किल 1-2 किलोमीटर का फासला तय करेगी अगर कोई धक्का मारकर चलाए। लेकिन अगर इंजन में भाप भरी हुई है, स्टीम भरी हुई है, गर्मी भरी हुई है और उस भाप के जरिए इस रेल को चलाया जाएगा तो वो दिन भर में 400-500 मील का फासला तय करेगी। तो देखा, तो मोहब्बत जो है वो बमंजिले स्टीम के है, भाप के है। हजरत फरमाते हैं कि ट्रेन के तेज रफ्तार चलने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक भाप की, स्टीम की, और दूसरे पहियों की यानी टायर की। अगर इंजन और भाप न हो, सिर्फ पहिए हो, तो वो ट्रेन तेज नहीं चल सकती, और अगर भाप हो लेकिन टायर ही न हो तो वो भाप उस ट्रेन को तबाह कर देगी, वो ट्रेन जमीन के अंदर धस जाएगी। लिहाजा भाप की भी जरूरत है और पहियों की भी जरूरत है। तो हजरत फरमाते हैं कि इसी तरह इंसान के अंदर मोहब्बत जो है वो बमंजिले भाप के, स्टीम के है, और अमल बमंजिले टायर के है, पहिए के है। तो अमल भी हो, मोहब्बत भी हो, इसलिए पहले थोड़ा सा अमल तो करना पड़ेगा, यानी पहिए तो लगाने पड़ेंगे। फिर उस अमल के नतीजे में जब मोहब्बत की भाप पैदा होगी, गर्मी और स्टीम आएगी, तो फिर तेज रफ्तारी से तरक्की होगी और तेज रफ्तारी से फिर अमल होगा। सुभान अल्लाह जी। तो अंदर स्टीम थे ना, मोहब्बत जो है ना वो एक अंदर एक तरह की अजीब गर्मी पैदा कर देता है। फिर इंसान मुश्किल से मुश्किल काम कर देता है और उसके लिए कुछ पता भी नहीं चलता, आसान हो गया। और पहले बैठी है, क्योंकि रेल पटरी पर तो खड़ी है लेकिन चल ही नहीं पाती, धक्का मारो तो चले फिर खड़ी हो जाए, क्योंकि अंदर गर्मी नहीं है। ऐसे ही इंसान आमाल से बैठ गया है, क्योंकि मोहब्बत की गर्मी खत्म हो गई है। तो मोहब्बत की गर्मी को पैदा करना है, थोड़ा सा अमल शुरू कर दे, उससे गर्मी पैदा होगी, फिर वो होगा तो एक दूसरे से चलेंगे, क्योंकि पहिए थोड़ी सी भी भाप होगी तो पहिया चलना शुरू करेगा, भाप बढ़ती जाएगी, पहिए तेज चलते जाएंगे, तेज चलते जाएंगे, और चलते चलते मंजिल पर और कई मीलों का सफर तय कर लेंगे। तो इस तरीके से दोनों चीज की जरूरत है। उसकी दूसरी मिसाल समझिए, नई टेक्नोलॉजी की जरा। हाँ, आजकल की मिसाल से यूं समझ ले जैसे ये हवाई जहाज है, ये हवा में उड़ता है और हवा में 500 मील फी घंटे की रफ्तार से सफर करता है। हवाई जहाज जो है ना, एक घंटे में कितना, 500 मील सफर करता है, यानी 500 किलोमीटर से ज्यादा, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर तक होता है, तो वो एक घंटे में सफर करता है। लेकिन उड़ने से पहले हवाई जहाज को जमीन पर उसको टैक्सी करनी पड़ती है, यानी उसको चलना पड़ता है। कोई जहाज ऐसा नहीं है जो खड़ा खड़ा सीधा उड़ जाए, पहला रनवे पर उसको रनिंग करनी पड़ती है, जमीन पर ही जहाज को उड़ने से पहले रनवे पर उसको रनिंग करनी पड़ती है। कोई जहाज ऐसा नहीं जो खड़ा खड़ा था और सीधा उड़ गया, बल्कि थोड़ी देर उसको जमीन पर चलाना पड़ता है। ये वक्त मुझ जैसे मुसाफिर के लिए बड़ा सब्र आजमा वक्त होता है। वो जो जमीन पर चले, कब उड़े, कब मंजिल पर पहुंचे, तो सब्र आजमा वक्त होता है। इसलिए कि जब जहाज उड़ जाता है तो मैं अपने लिखने के काम में मशगूल हो जाता हूं। हजरत फरमाते हैं कि क्योंकि जब तक चल रहा है तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि टेंशन होता है, अभी उड़ेगा, अभी उड़ेगा, अभी उड़ेगा, तो वो अपने ऊपर जाने के बाद फिर अपने काम, तो बोले मैं अपने लिखने के काम में मशगूल हो जाता हूं, और जब तक जमीन पर चल रहा होता है उस वक्त तक कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, कंप्यूटर वगैरह खोल के वो अपने काम करते थे जहाज में बैठे बैठे, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे का जो भी हो, उनका वक्त गुजर जाता था, पता भी नहीं चलता, मंजिल आ जाती। دیکھو یہ حضرات اپنے وقتوں کو ایسے گزارتے تھے. ہاں تو فرمایا تو جب تک زمین پر چل رہا ہوتا اس وقت تک کوئی کام نہیں کر سکتا. بہرحال ہر جہاز اڑنے سے پہلے زمین پر آہستہ آہستہ چلتا ہے پھر اڑتا ہے. بالکل اسی طرح محبت پیدا کرنے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, تھوڑا سا عمل کرنا پڑے گا, گویا کہ رن وے پر چل رہے ہو. یہ ہے تھوڑا سا عمل کرنا پڑے گا, اور جب اللہ تعالی کے حکم کی اطاعت میں اپنی خواہشات کے خلاف عمل کرنا شروع کروں گے تو پھر محبت کی بھاپ اسٹیم تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی اور پھر تیز رفتاری سے ترقی ہوگی, ٹیک آف کریں گے, پھر بلندی پر چلتے جاؤ. اگر اوپر جانا ہے نا, ہمیں بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے, تو اللہ سے تعلق حاصل کرنا ہے تو پہلے یہ کام کرنا ہوگا. طاعت میں مواظبت یہ بات چل رہی تھی, تو اللہ کی اطاعت کریں گے تو کیا ملے گا, محبت ملتی ہے, اور محبت پر کیا ملے گا, پھر اطاعت ملتی ہے. ایمان کی لذت حاصل کر لو, یہی معنی اس حدیث کے ہے کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نامحرم پر لذت لینے کے لیے نگاہ ڈالنے کو دل چاہ رہا ہے اور بہت شدید تقاضا ہو رہا ہے کہ میں اس پر نگاہ ڈال کر لذت حاصل کر لوں, لیکن اگر تم نے اللہ کے حکم کا خیال کر لیا, اللہ کے ڈر سے اس نگاہ کو بچا لیا اور نظر نہیں ڈالی اور نظر ہٹانے کی تکلیف اور اپنے نفس پر برداشت کر لی, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی ایسی لذت عطا فرمائیں گے کہ گناہوں کی لذت اس کے سامنے ہیچ در ہیچ ہوگی. نگاہ کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ ایسی لذت دیتے ہیں ایمان کی کہ جو گناہ کی جو لذت ہوتی ہے اس کے مقابلے وہ کچھ بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتے کہ بندے میں نے تیرے اوپر صبح سے لے کر شام تک کتنے انعامات کر رکھے ہیں, تیرے اوپر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے, تجھ سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ میری خاطر ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بچا لے, اور جب تو اپنے آپ کو اس سے بچائے گا تو میں تجھ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں. جی میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یعنی جو لوگ ہمارے راستے میں تھوڑی سی کوشش کریں گے تو ہم ضرور بھی ضرور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستوں پر لے جائیں گے, ہدایت دیں گے نہیں, ہاتھ پکڑ کر. حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ فرمایا ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستوں پر لے جائیں گے. لہذا تھوڑی سی قربانی تو دینی ہوگی, یہ جنت اتنی سستی نہیں ہے اور یہ محبت اتنی سستی نہیں ہے, اور وہ قربانی یہ ہے کہ نفس کو ناجائز خواہشات سے روکنے کی عادت ڈالو. اس لیے اس زمانے میں سب سے بہترین طریقہ کیا تھا, دعوت اللہ, اللہ کے راستے میں نکلنا سب کو چھوڑ کر. ایک مجاہدہ ہے اور اس کے ذریعے جب نکل جاتے ہیں تو اللہ کی محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. اس سے بھی ہوتا ہے گناہوں سے بچنے, کیونکہ یہاں سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے تو کم سے کم اس راستے میں نکل جائیں گے تو محبت پیدا ہوگی, جب محبت پیدا ہوگی تو نیت کر کے آئے گا کہ اب گھر پہ جا کر یہ گناہ نہیں کرنے, تو اسے کئی لوگ اس طریقے سے بچ گئے. ہاں پہلے بچنا چاہتے تھے نہیں ہوتا تھا. اور اس کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے تصور کرو کہ یہ دنیا ہے یہ جنت نہیں ہے, اور آسانی کرنے کے لیے کیا تصور کرو کہ یہ دنیا ہے یہ جنت نہیں ہے. ہم کیا بھول گئے, ہم سمجھے یہی جنت ہے, اس لیے کیا سوچتے ہیں جنت کا مطلب, یعنی یہاں اپنی مرضی سے کام کرو, تو بھول گئے نا کہ یہ تو دنیا ہے, دنیا میں اپنی مرضی سے کام, ہر کام اپنی مرضی سے نہیں ہوگا. کہ دنیا کے اندر یہ جنت نہیں ہے, اور اس دنیا کے اندر بڑے سے بڑا انسان چاہے وہ بڑے سے بڑا حاکم ہو, बड़े से बड़ा सरमायादार हो, दौलतमंद हो, क्या वो दावा कर सकता है कि यहां जो कुछ हो रहा है वो मेरी मर्जी के मुआफिक हो रहा है? कोई दावा कर सकता? बल्कि इस दुनिया में हर इंसान पर उसकी मर्जी के खिलाफ हालात पेश आते हैं, क्योंकि जन्नत नहीं है, दुनिया है। मर्जी के खिलाफ हालात पेश आते हैं और आते रहेंगे, इससे बचना मुमकिन नहीं, इससे बचना मुमकिन नहीं, कोई बच ही नहीं सकता। आज जिनके हाथों में पूरी दुनिया की कमान है, जिनके पास दौलत के अंबार लगे हुए हैं, यानी पूरी दुनिया की हुकूमतें हैं, जिनके पास दौलत के अंबार लगे हुए हैं, नौकर चाकर है, हशम खदम मौजूद है और दुनिया भर के तमाम वसाइल टेक्नोलॉजी उनको मयसर है, उनसे जाकर पूछो क्या तुम्हारी तबीयत के खिलाफ कोई वाकया हुआ या नहीं, तो बस अवकात उनकी तबीयत के खिलाफ इतनी ज्यादा बातें होती है जितनी हमारी और आपकी तबीयत के खिलाफ नहीं होती। लिहाजा ये तो हो नहीं सकता कि मैं हमेशा खुश रहूं और मुझे कभी कोई गम और तकलीफ ना आए, कभी कोई सदमा न पहुंचे और कभी कोई खिलाफ तबाह बात ना हो। लिहाजा तबीयत के खिलाफ तो हालात पेश आएंगे। ये है, ये न समझे कि ये जन्नत है, इंसान भूल जाता है, इसलिए याद करे कि ये दुनिया है। जब सोचेगा वो ये दुनिया है तो बोले ओ सॉरी, अब आ गया तो ठीक है, फिर सबर आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन जब भूल जाता है कि वो तो समझता है मैं जन्नत में हूं। अब दो रास्ते हैं, याद रखो दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि तबीयत के खिलाफ करने के लिए ऐसे कामों को इख्तियार कर लो जिसके नतीजे में अल्लाह जल्ल शानु राजी हो जाए। एक रास्ता तो ये है कि तबीयत के खिलाफ करने के लिए ऐसे कामों को इख्तियार कर लो जिसके नतीजे में अल्लाह जल्ल शानु राजी हो जाए और अल्लाह ताला फरमाए कि देखो ये है मेरा बंदा, देखो ये है मेरा बंदा जिसने मेरी खातिर अपनी तबीयत के तकाजों को पामाल कर दिया। एक रास्ता तो ये। दूसरा रास्ता ये है कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते रहो। एक रास्ता तो अपनी ख्वाहिशात को तोड़ते रहो और दूसरा रास्ता अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते रहो, उसकी कोशिश करते रहो, लेकिन उसका नतीजा ये होगा कि तुम सारी जिंदगी ख्वाहिशात को पूरा करने में लगे रहोगे और अल्लाह ताला से दूर होते चले जाओगे। लिहाजा जब ख्वाहिशात के खिलाफ काम होने ही में है, ख्वाहिशात के खिलाफ कदम उठाने में ही काम होगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तो फिर अल्लाह के हुक्म की खातिर ख्वाहिशात के खिलाफ काम क्यों न कर लो। जब अल्लाह तक पहुंचना है तो दो रास्ते, एक तो अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ चलो और एक ख्वाहिशात के मुताबिक चलो। तो ख्वाहिशात के मुताबिक चलोगे तो उस पर तो कभी तुम अल्लाह तक पहुंच नहीं सकते, तो जब उसमें तो मिलने वाला कुछ नहीं, तो उससे अच्छा है कि वही रास्ता ले ले, थोड़ा सा ख्वाहिशात के खिलाफ चलेंगे तो अल्लाह तक पहुंच जाएंगे। और जब तुम एक मर्तबा ये तसव्वुर करोगे कि मैं तबीयत के खिलाफ ये काम अल्लाह जल्ल शानू की इताअत में कर रहा हूं, तो उस सूरत में वो तकलीफ भी बिलाखिर लजीज बन जाएगी। जब नियत कर लेंगे तो अल्लाह उस तकलीफ के अंदर अल्लाह एक लज्जत डाल देंगे, अल्लाह उस तकलीफ के अंदर भी एक लज्जत डाल देंगे, लजीज बन जाएगी। क्यों? इसलिए कि जब ये तसव्वुर आएगा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने महबूब हकीकी की खातिर अपने नफ्स को पामाल किया है, तो उससे तबीयत को जो इंशराह नसीब होगा, उससे जो नूर पैदा होगा, उससे जो फरहत और इंबिसात पैदा होगा, उसके सामने दुनिया की हजारों लज्जतें कुर्बान है। जैसे बताया था कि आंख अगर बद नजरी से हिफाजत कर ली तो उसकी वजह से अल्लाह ताला एक ईमान में लज्जत पैदा फरमाते हैं, और अगर उठा ली तो कुछ नहीं मिलने वाला। जब लज्जत मिलेगी तो लज्जत मिलेगी तो अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। और अल्लाह ताला, देखो अल्लाह को ढूंढना हो तो कहां ढूंढेंगे भाई, हम सब अल्लाह को ढूंढ रहे हैं। अल्लाह ताला टूटे हुए दिलों के साथ है, अल्लाह को कहां ढूंढना है। बहुत आसान एड्रेस है अल्लाह का, आज लोगों से मिलना हो तो बहुत मुश्किल एड्रेस उनका, क्या है पता नहीं कहाँ कहाँ गुम हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतनी कुदरत वाला, इतना खजाने वाला, सारे बादशाहों का बादशाह, लेकिन आसान इतना है कि उसको ढूंढना हो तो बहुत आसान है। उसका घर बहुत जल्दी मिल जाता है, एड्रेस बहुत आसान है। वो सुन लो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला टूटे हुए दिलों के साथ है, बस टूटे हुए दिलों के साथ तुम भी चले जाओगे तो अल्लाह वहां मिल जाएगा। अल्लाह ताला तुमसे ये चाहते हैं कि कभी कभी मेरा बंदा अपने दिल पर चोट मारा करे, कभी कभी मेरा बंदा अपने दिल पर चोट मारा करे। मसलन एक काम करने को दिल चाह रहा है लेकिन अपने दिल पर चोट कार कर रुक गया, यानी चोट मारी और जबरदस्ती रुक गया, और जब अल्लाह ताला की खातिर अपने दिल पर चोट मार ली तो उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते कि मैं इस दिल में आकर बैठूंगा, मैं इस दिल में आकर बैठूंगा, ये दिल मेरी तजल्ली गाह होगा, मेरी तजल्ली गाह यानी अल्लाह के रहने की जगह, तजल्ली गाह। जी सुभान अल्लाह, तजल्ली गाह जहां अल्लाह रहेंगे, तजल्ली डालने की जगह। चुनांचे हदीस शरीफ में है कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह मअल मुनकसरतिल कुलूब, मुनकसरतिल कुलूबहुम, यानी अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जिनके दिल टूटे हुए हैं। अब दिल का टूटना दो तरह से होता है, दिल का टूटना दो तरह से है। आपके दिल तो नहीं टूटे ना, सही सही, सही सालिम है ना। हाँ, क्योंकि लोग तोड़ते नहीं है कभी दिलों को, और संभाल संभाल के भी रखते हैं कि नहीं कहीं टूट ना जाए। याद रखो उसका टूटना ऐब नहीं है, हर चीज का टूटना ऐब है, हर दिल का टूटना यही उसकी खूबी है, यही उसकी अच्छाई है। अब दिल का टूटना दो तरह से होता है, या तो गैर इख्तियारी तौर पर दिल टूटे हुए है इसलिए कि उनके साथ मसाइब पेश आए, मुसीबतें आ गई, दिल टूटा हुआ है, बैठा हुआ है बंदा सोच रहा है, दिल टूटा हुआ है, आंखों से आंसू निकल रहे, सोच रहा है हाय क्या होगा मेरा, कोई मुसीबतों से दिल टूटे हुए इसलिए उनके साथ मसाइब पेश आए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उनके साथ हूं। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या फरमा दिया, फरमाया तुम जाओ उनके पास, इसीलिए हदीस पाक में आया ना कि मरीज मरीज का दिल क्या होता है, अरे टूटा हुआ होता है। फरमाया उसके पास जाओ, मरीज की आयदत पर अजर बढ़ा दिया, 70,000 फरिश्ते उसकी मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, और फरमाया दूसरा फायदा तुमको मैं उधर ही पाऊंगा जहां मरीज होगा। और ये हदीस में फरमाया उसका वो में फरमाया मरीज के पास जाओगे तो गोया तुमने रहमत में गोता लगाया, स्विमिंग किया रहमत में। अभी रहमत में स्विमिंग करना हो तो कहां जाओ, बोले मरीजों के पास जाओ, मरीजों का तलाश करो, अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने बिल्डिंग में, अपने मोहल्ले में कितने मरीज होते हैं, कभी हम जाते नहीं है। हाँ, कहाँ जाएंगे भाई, मेरा कौन सा रिश्तेदार बीमार हुआ तो जाएंगे, क्यों कि वो तो फिर कहेंगे भाई मेरे पास पूछने के लिए भी नहीं आए। हाँ, इसलिए जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे कि मरीज है और वहां अल्लाह मिलेगा, बल्कि जाओ ताकि अल्लाह वहां मिलेगा। अब रिश्तेदार हो, बस ईमान वाला है, उसके पास चले जाओ, दिल टूटा हुआ है, अल्लाह वहां मिलेगा। मैं कभी कभी किसी मरीज के पास जाऊं, मैंने कहा चलो भाई अल्लाह को ढूंढने जा रहे हैं, अल्लाह को ले। अरे बोले किधर, मैंने कहा हॉस्पिटल में। कहा क्यों, बोले वहां अल्लाह मिलेगा। कहा कैसे, मरीज है, मरीज की आदत करेंगे और अल्लाह ताला हदीस पाक का पर अमल हो जाएगा और अल्लाह हमें जरूर मिलेंगे। तो फरमाया हाँ, मुसीबत की वजह से एक दिल टूटे, बोले फरमाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उनके साथ हूं, मैं उनके साथ हूं। और दूसरा माना यह है कि दिल में गुनाह करने की ख्वाहिश पैदा हो रही थी लेकिन उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को पामाल करके अपना दिल तोड़ा तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तुम्हारे साथ हूं। तो वहां पर भी अल्लाह ताला हमारे साथ है। अल्लाह अकबर, ये दिल उनकी तजल्लीगाह है। इस बात को कहने के लिए इकबाल मरहूम ने, बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, बड़ा खूबसूरत शेर कहा है। जो बार बार आया, बड़ा मजा है, मजेदार है, पढ़ने को जी जाता। तू बचा बचा के न रख उसे, तू बचा बचा के न रख इसे, कि ये आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है, निगाह आईना साज में। शिकस्ता हो तो अजीज तर है, निगाह आईना साज में। यानी ऐसा न कर कि तेरा दिल बचा रहे। इसलिए बहुत से लोग अपना दिल बचाते हैं, तोड़ते नहीं है, तो अल्लाह उनके दिलों को फिर तोड़ता है। जिसको आम तौर पर लोग क्या कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी सारी सेटिंग हो गई है, क्या हुआ माशाल्लाह, बच्चे औलाद सब कमा रही है और हम सब ठीक है, फारिग हो गए, अब ये हो रहा है, हमारे सब यहां से माल आ रहा है, खाना पीना हो रहा है, मकान हो गया, ये हो गया, सब सेटिंग हो गई। अब अचानक अल्लाह ताला उनके दिलों को तोड़ देता है, अरे फिर वो घबरा जाते हैं, अरे क्या हो गया पला ऐसा, अरे कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत कर रहा है, आपने दिल तोड़ा नहीं तो अल्लाह ने दिल तोड़ दिया, अब उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। तो ये है, इसलिए कभी घबराओ मत, दिल टूट जाए तो यूं समझो कि उसने तोड़ा है। उसने तोड़ा है, किसने तोड़ा, जिसने बनाया है, जिसने बनाया है उसी ने दिल बनाया है, उसी को तोड़ता है, क्योंकि वो मेरे को इधर आना है तो मैं दिल को तोड़ूंगा, मेरे रहने के लिए मैं बनाऊ। जैसे एक इंसान ने अपना मकान बनाया, फिर क्या तोड़ दिया, क्यों भाई, मेरा मकान है, मैं तोड़कर नया बनाऊंगा, जरा फैसिलिटी अच्छी रखूंगा, पुराना हो चुका था तो अब ये दिल में बहुत गंदगी आ जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाते, अल्लाह ताला खुद इस दिल को तोड़ते हैं, सब निकालते हैं, साफ करते हैं, कहा अब मैं आऊंगा तेरे पास। जी, तो अल्लाह ताला दिलों को तोड़ते, तो उसको हमेशा, तो फरमाया ऐसा न करके तेरा दिल बचा रहे, उसमें जो ख्वाहिश पैदा हो रही है तो उसको हमेशा पूरा करता रहे, तो ऐसा न कर, इसलिए कि जिस जात ने ये दिल का आईना बनाया है, उस जात का कहना यह है कि जितना ये दिल का आईना टूटेगा उतना ही ये महबूब होगा। जितना ये दिल का आईना टूटेगा ये उतना ही महबूब होगा। दुनिया के आईने जो हमारे चेहरे को दिखाते हैं, ये तो जितना टूटेगा इतना खराब है, जितना अच्छा होगा इतना वो खूबसूरत है, लेकिन दिल एक ऐसा आईना है कि जो जितना बना हुआ होगा, जितना सही होगा उतना ही खराब है, जितना टूटा हुआ होगा इतना महबूब है। इतना ही मैं इस दिल का साथी बनूंगा, महबूब होगा उतना ही मैं उस दिल का साथी बनूंगा। ये दिल अल्लाह ताला ने अपने लिए बनाया है, ये बात पहले सुन लो, ये दिल किसके लिए बनाया, हमने दूसरों को दे दिया, ये दिल अल्लाह ने अपने लिए बनाया है। और आज क्या हो गया कि हमने अल्लाह को निकाल दिया और सबको भर लिया, कहा ये भी है वो भी है ये भी है, पता नहीं हजारों को हमने दिलों में भर दिया। और बनाया किसने, अल्लाह ने बनाया, अपने लिए बनाया और उसको तो एक साइड पर कर दिया। तो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं, देख रहे हैं, अल्लाह ताला भी देख रहे हैं कि मेरे बंदे तूने क्या कर दिया, मुझे निकाल दिया, दूसरों को भर दिया, ठीक है ठीक है, मेरे हाथ में सब कुछ है, मेरे हाथ में। फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसके दिल को तोड़ते हैं और जो सब कुछ भरा हुआ था सबको निकाल देते हैं, कहा अब अल्लाह ताला आ जाते हैं, कहा बंदा तूने मेरे को निकाला था, अब मैं वापस आ गया तेरे दिल में। तो ये दिल अल्लाह ताला ने अपने लिए बनाया, ये दिल उन्हीं की तजल्ली गाह है, इसमें किसी दूसरी चीज की शमूलियत और अल्लाह ताला को गवारा नहीं है कि इसमें कोई दूसरा रहे। बोले इस दिल में सिर्फ मैं ही हूंगा, मेरे अलावा दूसरों को रखना नहीं, वरना शिर्क बन जाएगा, मैं ही रहूंगा। अब बताओ हम अपने दिलों को जरा देखें, सुनते सुनते, कि हमारे दिल में सिर्फ अल्लाह ही है या सब कुछ है, अल्लाह भी है और दूसरे भी है, तो ये क्या हो गया। अल्लाह ताला फरमाते नहीं, मैं नहीं रह सकता अगर दूसरे है तो, पहले तो दूसरों को निकाल फिर मैं आऊंगा। तो उसमें किसी दूसरे चीज की शुमूलियत अल्लाह ताला को गवारा नहीं। और दिल अल्लाह ताला के लिए उस वक्त बनता है जब ख्वाहिशात के शीशे तोड़े जाते हैं, हम उस घर में रहेंगे जिसे बर्बाद किया। मैंने भी एक शेर कहा था हमारे बुजुर्ग हजरत हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दामद बरकातुहु, अभी तो रहमतुल्लाह अलैह हो गए, इस शेर को बहुत पसंद करते और अपनी मजलिसों में सुनाया करते हैं। वो ये है कि दर्दे दिल दे के मुझे उसने इरशाद किया, दर्दे दिल दे के मुझे उसने इरशाद किया, हम उसी घर में रहेंगे जिसे बर्बाद किया। हाय हाय, दर्दे दिल दे के मुझे उसने इरशाद किया, यानी फरमाया दर्दे दिल दे के मुझे उसने इरशाद किया, हम उसी घर में रहेंगे जिसे बर्बाद किया। हाय हाय, दिल को बर्बाद करने का माना यह है कि ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए पामाल करे, दिल में गुनाहों के तकाजे उठ रहे हैं, दिल में गुनाहों के दाइये पैदा हो रहे हैं, चारों तरफ से गुनाह के महरकात गुनाह की तरफ बुला रहे हैं, लेकिन मैंने अपने अल्लाह की खातिर इस दिल को तोड़कर बर्बाद किया। यह दिल को तोड़कर बर्बाद किया तो फिर अल्लाह ताला इस दिल में मुकीम होते हैं, फिर वो दिल अल्लाह ताला की तजल्ली गाह बनता है। और ये दावत और तबलीग के अंदर बहुत दिल टूटता है, बहुत दिल टूटता है, ये बहुत शॉर्टकट रास्ता है। याद रखो ये बहुत अहम काम अल्लाह ने दिया है, हमें इसकी हकीकत का पता नहीं है, इसलिए मैं बार बार बताता जाता हूं कि अपनी कमजोरी की वजह से नहीं होता है वो और बात है, लेकिन इसकी अहमियत उसके फायदे बहुत ऊंचे है। ये चीज वहां बहुत आसानी से मिल जाता है क्योंकि दिल टूटता है। कैसे टूटता है कि एक तो घर से दूर हुए, बीवी याद आ रही, बच्चे याद आ रहे, खाना तबीयत के मुआफिक नहीं है, मस्जिद में सो रहे, पानी की कमी है, गर्मी है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, क्या नहीं है क्या। अब बताओ दिल टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? न भाग सकता है, न बोल सकता है, न झगड़ सकता है, कुछ भी नहीं कर रहा है, और बेचारा खामोश बैठा है। उसको पूछो अरे इसका इतना दिल टूटा हुआ था, क्या अल्लाह नहीं मिलेगा फिर? हाँ, ये रास्ता बड़ा अजीब है, इसलिए अब वो कितना जल्दी उसको अल्लाह मिल गया। क्यों? कि उसका दिल टूटा हुआ है, कोई गुनाह नहीं कर सकता। उसकी तबीयत थी रोजाना टीवी देखने की और क्या देखने की। अभी आज फरमाया मोबाइल बंद करो, अमीर साहब ने कहा ये भी बंद करो, कुछ नहीं देखना। अब बेचारे की अंदर से ख्वाहिश हो रही है यार मैं रोजाना इस टाइम में ये देखता था, अब तबीयत सोने को जी चाह रही है, अमीर साहब ने कहा तालीम में बैठना है, अब और टूट गया। अरे क्या करो क्या नहीं करो, अब रो रहा है आए अल्लाह क्या हो गया। अब उसका ये दिल का तोड़ना है, किसने तोड़ा है? अल्लाह ने तोड़ा है। तो अब बताओ उसको अल्लाह मिलेगा नहीं मिलेगा? कितना आसान रास्ता है, अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ जी। कभी खाना बन के भी आया तो फिर या तो उसमें मिर्च ज्यादा हो गई, या इसमें नमक ज्यादा हो गया, या कच्चे चावल रहे, अब क्या हुआ, अब खा ही नहीं। एक तो बड़ी मुश्किल से भूख लगी थी बहुत जबरदस्त, अब खा भी नहीं जा रहा। अब दिल टूटा क्या नहीं टूटा? अब सब्र है, क्योंकि किसको तमाचा मारे? घर में होता तो बीवी को मारता था, लेकिन यहां किसको मारे? गुस्सा तो बहुत आया, अब गुस्सा पी रहा है, ये क्या नहीं टूट रहा है दिल? जो जमातों में गए उनको पता है ना, और जो नहीं गए हैं वो भी नियत कर ले कि हम भी जाकर देखे, बहुत जल्दी अल्लाह मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये है तो दिल को बर्बाद करने के माना यह है कि ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए पामाल करे, दिल में गुनाहों के तकाजे उठ रहे हैं, दिल में गुनाहों के दाइये पैदा हो रहे हैं, चारों तरफ से गुनाहों के हालात है बुला रहे हैं, लेकिन मैंने अपने अल्लाह के खातिर इस दिल को तोड़कर बर्बाद किया तो फिर अल्लाह ताला इस दिल में मुकीम होते हैं, फिर वो दिल अल्लाह ताला की तजल्ली गाह बनता है। जी, मोहब्बत से ताअत और ताअत से मोहब्बत का नतीजा, इसी बात को हजरत वाला यहां फरमा रहे हैं कि जब पहले इताअत करने के लिए थोड़ी सी कुर्बानी दोगे, पहले इताअत करने के लिए थोड़ी सी कुर्बानी दोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे और ख्वाहिशात को पामाल करने की कोशिश करोगे तो अल्लाह ताला अपने फजलो करम से अपनी मोहब्बत अता फरमाएंगे। यह उनका वादा है, यह उनका वादा है। मुमकिन नहीं है कि उसके बाद अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा ना हो। अब बताओ ये चीज इस जमात में दावत और तबलीग में कितने आसानी से मिल जाती है बताओ, क्योंकि दिल तो टूटा ही है। अब क्या अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिल सकती? अरे उसको तो पहले ही दिन दिल टूट गया है, पहले ही दिन अल्लाह की मोहब्बत मिल गई है, अब उस मोहब्बत में चलता है। तो फरमाया मोहब्बत पैदा ना हो, उसके बाद अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा ना हो। जब मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो उस मोहब्बत के नतीजे में जो काम पहले भारी और मुश्किल मालूम हो रहे थे वो आसान नजर आएंगे और मजीद इताअत होगी। और जब मजीद इताअत होगी तो मोहब्बत और बढ़ेगी और मोहब्बत में इजाफा होगा, और जब मोहब्बत में इजाफा होगा तो और इताअत आएगी और ये सिलसिला मरते दम तक चलता रहेगा, यहां तक कि मौत के वक्त अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आ जाएगा। क्या? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जिई इला रब्बिकी राजियतम मर्जिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये आ जाएगा, ए इत्मीनान वाली जान, आज अपने परवरदिगार की तरफ आ जा, बड़े मेहनत मुजाहदे किए तूने, जी अब बड़े मेहनत मुजाहदे किए, जिसकी मोहब्बत में तूने जिंदगी के दिन रात गुजारे हैं, आज आकर मेरे बंदों में शामिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। यह है अंजाम उस सारे तसलसुल का, मुजाहदे का, यानी ताअत से मोहब्बत और मोहब्बत से ताअत, फिर ताअत से मोहब्बत, फिर मोहब्बत से ताअत, यहां तक कि अल्लाह ताला इस मकाम तक पहुंचा देते हैं। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हमें इस रास्ते पर लगा दे, आमीन। तो ये है ताअत से मोहब्बत, मोहब्बत से ताअत। तो ये है कि अल्लाह की मोहब्बत आएगी, तो इसीलिए दावत और तबलीग में चलने के बाद लोगों की जिंदगी में जो बहुत ज्यादा तब्दीली आती है, इसकी वजह क्या है कि वहां पर उनका दिल टूटता है, दिल टूटता है, अल्लाह मिलते हैं, अल्लाह मिलते हैं, तो फिर उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि अब मुझे ये काम नहीं करना है। तो इताअत से मोहब्बत पैदा, मोहब्बत से फिर इताअत का जज्बा पैदा, पहले इताअत की कि अल्लाह के हुक्म पर निकला, अब उस इताअत में उसको अल्लाह, उसका दिल टूटा, अल्लाह ने उसको मोहब्बत दे दी, उस मोहब्बत में आइंदा अपनी जिंदगी को बदलने का इरादा किया, बेनमाजी था तो नमाजों का इरादा किया, कुरान नहीं जानता था सीखने का इरादा किया, हराम रोजी थी तो उसको हलाल बनाने का इरादा किया। देखो इताअत पर हुआ। तो इसमें बहुत आसानी थी, इसलिए तो फरमाया था कि काम बहुत आसान था, करने ओला का हीरा था, पहले जमाने का एक हीरा था जो अल्लाह ने हमें दिया था, आज भी वो है, नियत सही करके सही साथी मिल जाए जाएंगे तो बहुत फायदा होगा, नियत सही हो, पहले नियत हो तो हम इस रास्ते पर लगा। बस ये तो इताअत के बारे में बात चल रही थी कि इताअत क्या है और इताअत से क्या फायदा होगा, ये सारी बात उस पर चल रही थी कि ख्वाहिशात को तोड़ना, फिर ये दिल को तोड़ना, टूटे हुए दिल में अल्लाह आता है, और मोहब्बत क्या है, मोहब्बत को मिसाल से समझाया कि स्टीम की तरह है, हवाई जहाज की मिसाल दिया कि फिर वो मोहब्बत आती है तो फिर इंसान ऊपर जाता है। तो ये सारा इताअत था। अब इताअत आएगी कैसे? इताअत का आसान तरीका इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंशाल्लाह इसको कल बताएंगे, इताअत इसके जरिए से आएगी जी। ये बहुत आसान रास्ता है इताअत के लाने का, और अजीब रास्ता है, नूर ही नूर है, इंशाल्लाह इस पर बात करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह हम इकरारी मुजरिम हैं, हमारे जुर्मों पर किसी गवाह की जरूरत नहीं, या अल्लाह हम खुद कहते हैं कि हमसे कसूर हो गए हैं, या अल्लाह हमसे कसूर हो गए हैं, लेकिन या अल्लाह हम आपको मनाने बैठे हैं, या अल्लाह हम आपको मनाने बैठे हैं, आपको राजी करने बैठे हैं, और हमें ये पता है कि आप बहुत जल्दी राजी हो जाया करते हैं, आपको मनाने वाला कभी नामुराद नहीं होता, या अल्लाह आपको मनाने वाला कभी नामुराद नहीं होता, आप मान जाइए, आप मान जाइए, हमसे राजी हो जाइए। या अल्लाह अगर रास्ता चलते किसी को किसी का धक्का लग जाता है और बहुत तेज लगता है, तो जिसे धक्का लगा है वो धक्का देने वाले को गौर कर देखता है, गौर कर देखता है, लेकिन जब धक्का मारने वाला पलट कर उसे पकड़ता है, उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बड़ी लजाजत और नरमी के साथ उससे कहता है कि भाई माफ करना, मुझसे गलती हो गई, तो वाकई आपको बहुत तेज लग गया, तो उसकी नरमी और आजीजी की वजह से गुस्से में भरा हुआ इंसान भी पसीज जाता है, नरम हो जाता है और कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया। ये अल्लाह हम भी इसी तरह आपके सामने आजीजी लजाजत के साथ माफी मांग रहे हैं और आपके सामने अपने कसूरों का एतराफ कर रहे हैं। आप हमें माफ कर दीजिए, आप हमें माफ कर दीजिए, आप हमें माफ कर दीजिए। या अल्लाह हम गुनहगार है, हम सियाकार है, हम खताकार है, हम कसूरवार है, बुरे है, बल्कि बुरों में सबसे ज्यादा बुरे है, बुरे है, बुरों में सबसे ज्यादा बुरे है, इकरारी मुजरिम बनकर आपके सामने हाजिर हुए है। अल्लाह हमारे जुर्मों पर किसी गवाह की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने तमाम जुर्मों का एतराफ करते हैं, बड़ी उम्मीद के साथ आपके सामने हाथ फैलाए बैठे हैं, बड़ी उम्मीद के साथ आपके सामने हाथ फैलाए बैठे हैं, अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं, आप हमें माफ कर दीजिए। ए अल्लाह आप हमें माफ कर दीजिए, मेरे मौला हमें माफ कर दीजिए, मेरे अल्लाह हमें माफ कर दीजिए, मेरे अल्लाह गफ्फार हमें माफ कर दीजिए, हमसे राजी हो जाइए, हमसे राजी हो जाइए, हमसे राजी हो जाइए। अल्लाह हमारी बीवी बच्चों से राजी हो जाइए, या अल्लाह हमारे रिश्तेदारों से राजी हो जाइए, हमारे दोस्त अहबाब से राजी हो जाइए, हमारे सुनने वाले तमाम भाई बहनों से अल्लाह राजी हो जाइए, या अल्लाह पूरी उम्मत से राजी हो जाइए, पूरी उम्मत से राजी हो जाइए, या अल्लाह पूरी उम्मत से राजी हो जाइए, या अल्लाह आप हमसे राजी हो जाए, और नबी पाक अलैहिस्सलाम को भी हमसे राजी कर दीजिए, उनकी मोहब्बत दिल की गहराई में उतार दीजिए, रुए रुए में उतार दीजिए, हमें उनका दीवाना बना दीजिए, हमें उनका आशिक बना दीजिए, बल्कि इश्क की वो दीवानगी जो आपने हजरत सहाबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन को अता फरमाई थी, आप हमें भी वो दीवानगी अता फरमा दीजिए, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत अता फरमाइए कि हमारा कोई अमल खिलाफ सुन्नत न होने पाए, आपके तरीके से हटकर कोई तरीका हमें अच्छा न लगे। ए अल्लाह कहने वाला बहुत मोहताज है, सुनने वालों से भी ज्यादा मोहताज है, ए अल्लाह हमें भी कबूल फरमा, इस कहने वाले को भी कबूल फरमा, सुनने वालों को भी कबूल फरमा। ए अल्लाह बहुत कुछ मांगना है, ए अल्लाह जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, ए अल्लाह मांगने में जो कमी कोताही हुई अल्लाह उसको माफ फरमा, और या अल्लाह मांगना नहीं आता मांगने का ढंग अता फरमा, जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा लिखा मुतवक्के रहे उनकी जायज हाजत को पूरा फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिक।